शांति। दीपावली के पावन पर्वों में एक दो को मिलकर शुभकामनाएं देकर सभी ने अपना समय स्वास सफल किया होगा। दीपावली का ही एक पर्व कहे आज लाभ पाचम या ज्ञान पंचमी श्री पंचमी उसे कहते हैं। दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और देव दिवाली तक चलता है। उसी के बीच लाभ पाचम का शुभ दिन माना जाता है और उस दिन उद्घाटन होते हैं, शुभ माना जाता है। फैक्ट्रियां, ऑफिस, इंडस्ट्री, बिजनेस सब शुरू करते हैं। ऐसे शुभ दिन पर सभी दर्शकों को लाभ पाचम की बहुत बहुत मुबारक। जीवन में लाभ पाने की विधि भी भारतीय संस्कृति में बताई गई है कि शुभ विधि से लाभ प्राप्त करना है। तो आज समय के परिबल पर, टाइम फैक्टर के संबंध में हम बातचीत करेंगे। जब हम आत्मा इस फिजिकल वर्ल्ड में, साकार जगत में आकर पांच तत्व के बने शरीर को धारण करते हैं, तो शरीर एक प्रकृति से ही बना हुआ है। तो शरीर धारण करते ही स्थल और काल का बंधन, स्पेस एंड टाइम का बंधन शुरू होता है। तो टाइम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक परिबल है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, परंतु सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और इस सौर जगत के संबंध में, संसर्ग में हम आते हैं, तो समय का परिबल जीवन से लागू हो जाता है। समय के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम सब जानते हैं कि टाइम इज मनी बट मोर देन मनी। धन हम कमा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर समय को कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जो समय है वो है, वो ही है। इसलिए हाथ से निकल गया समय वापस नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस, जागृति और प्रबंधन और संयम हमारे जीवन में जरूरी है ताकि समय को हम सफल कर सके। टाइम पास नहीं करना है, वो तो कुछ भी ना करो, खाओ पियो और सो, उसमें भी टाइम पास हो जाता है। परंतु लक्ष्य से टाइम को सफल करना, संयम से समय को सफल करना, डिसिप्लिन, नियम मर्यादा से समय को सफल करना, ये जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें जीवन साफल्य, जीवन की सार्थकता का एहसास होता है, हमें खुशी और संतुष्टता का अनुभव होता है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमें टाइम मैनेज करने की भी कला को सीखना है। और वो बड़ी सिंपल है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें सेल्फ मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। और जो समय हमें मिला है वो हम किस में खर्च करते हैं? तो हमारी मुख्य तीन एक्टिविटी है आत्मा की, तो या तो हम सोचने में या बोलने में, बातचीत करने में या कर्म करने में समय का उपयोग करते हैं। अगर हम अपने मन वचन कर्म को श्रेष्ठ बना दे, शुद्ध बना दे, यथार्थ कर दे, तो हमारा हर क्षण समय हम सफल कर सकते हैं। आत्मा शरीर धारण करते ही प्राकृतिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आत्मा को फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं तो उनका चिंतन शुरू हो जाता है। तो हमें अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। कुछ भी सोचते रहे तो वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि अपनी दिनचर्या को बनाओ। सुबह अमृत वेले योग के बाद हम अपनी दिनचर्या को सेट करें कि आज क्या काम करना, क्या सेवा करनी है, किस प्रकार से आज का समय हमें यूज करना है। जैसे बाबा कहते हैं कि बड़े लोगों की अपॉइंटमेंट डायरी होती है, इतने से इतने यहाँ जाएंगे, इतने से इतने इस व्यक्ति को मिलेंगे, ये मीटिंग करेंगे, ये सेमिनार करेंगे, इस प्रकार से उन्हों की डेली दिनचर्या बनती है। तो हम आत्माएं जिनका परमात्मा से संबंध है, जो संगम के कल्याणकारी समय से गुजर रहे हैं, बाबा ने कहा आप भी VVIP हो, आप भी महान हो, तो हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना चाहिए। नहीं तो सोचने में ही टाइम गंवाते हैं, क्या करें क्या करें, किधर जाएं, किससे मिलें, क्योंकि कुछ सेटिंग नहीं है तो टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो रोज की डायरी लिखते हैं बड़े लोग, तो इससे बाबा भी हमें कहते हैं कि रोज की दिनचर्या सेटिंग करो और फिर रात को चेक भी करो या बीच बीच में भी चेक करो, तो हमारा अटेंशन रहेगा कि टाइम साधारण चिंतन में जा रहा है या व्यर्थ चिंतन में जा रहा है, मन ही मन ईर्ष्या, द्वेष, वैर, नाराजगी के कारण हम अंदर सोचते ही रहते हैं, कुड़ते हैं, गुस्सा अंदर अंदर करते रहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए चिंतन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य क्यों बाबा हमें कहते हैं कि मन और बुद्धि को सद्विचारों से भरो, ज्ञान रत्नों से भरो, ताकि मन को सही दिशा मिले, सही चिंतन चले, तो टाइम सफल होता है। कोई भी कार्य हमें करना है तो उसकी पहले यथार्थ प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है, ताकि करने के समय अगर प्लानिंग नहीं है तो मन द्विधा में रहेगा, कैसे करें, इसका कहा हुआ करें, किस प्रकार से करें, मुंझते रहेंगे। तो प्लानिंग प्रॉपर चाहिए और प्रिपरेशन उस अनुसार चाहिए। अगर पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो उस समय चीजें इकट्ठी करने में या व्यक्तियों को बुलाने में हमें टाइम लगता है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक तो कामकाज की हम लिस्ट बना लें कि आज ये करना है, फिर इसमें प्रायोरिटी हम फिक्स करें कि सबसे प्राथमिकता को फिक्स करें कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट काम कौन से हैं जो हमें तुरंत करने हैं, तो वो प्रायोरिटी हमें देना है। जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है तो किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्राथमिकता देनी है, वो हम सहज ही फाइनल कर सकते हैं और वन बाय वन वो काम करते जाएं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि कल भी कर सकते हैं, दो दिन के बाद भी कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट कौन से हैं वो जरूर हमें देखने हैं। जैसे हम लोगों को ज्ञान देते हैं तो वो कहेंगे कि टाइम नहीं है, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट अलग चीज से है। पर संसार चक्र के अनुसार जब समय को हम पहचान लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि अभी क्या करना जरूरी है। तो देखो, हम सभी अपने आप योग तपस्या के लिए, ज्ञान अध्ययन के लिए हमारे पास समय है ही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर है। इसके कारण इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी उस आधार पर फिक्स कर सकते हैं। तो देखो, आज हम सभी नियमित रूप से ये अभ्यास कर पाते हैं। दूसरी बात कि आज मुझे मान लो 10 काम करने हैं, पर सभी काम एक साथ तो नहीं कर सकते। कई बार हम अरे ये भी सोचना है, हाँ इसको भी मिलना है, इधर भी जाना है, ये चीजें भी लानी है, तो वन बाय वन करेंगे ना, एक साथ अनेक काम का सोचने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, चिंतन भी वेस्ट होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक एक काम लेते जाएं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो। वन बाय वन करते जाएंगे तो अपने आप सारे काम हो जाते हैं। कई बार सिर्फ हम काम के बारे में सोचते हैं, अरे कपड़े धोने हैं, सब्जी भी लानी है, ये भी करना है, करने लगेंगे तो टाइम बहुत कम लगता है। परंतु सिर्फ वर्क कॉन्शियस इसको कहते हैं कि वो बार बार सोचते रहना। जैसे सुबह जाना है, हमें ट्रेन पकड़नी है, तो रात से ही बार बार सोचते रहेंगे, नींद भी ठीक से नहीं आएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये कर्म कॉन्शियस ज्यादा हम हो जाते हैं, पर जितना हम योग अभ्यास करते हैं और हमें हर बात में डिटैच साक्षी रहने का अभ्यास हो जाता है, तो फिर हम आराम से सोएंगे भी और टाइम पर उठ के वो ट्रेन भी पकड़ लेंगे। दूसरी बात, टाइम कहाँ वेस्ट होता है। कई बार जैसे कोई हमें कोई काम बताएगा, दूसरा बड़ा दूसरा काम बताएगा, तीसरा काम बताएगा, और हम सोच कर समझ कर टाइम के हिसाब से यस और नो करना सीखे, ना नहीं कर पाते हैं, हाँ हाँ आपका भी काम कर दूंगा, हाँ आपका भी कर दूंगा, अरे उसने कहा है वो भी करना होगा, तो अपना देखे भी कर कि टाइम है या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, और पहले मैं किस कार्य के लिए निमित्त हूँ, ये बातें सोच समझ कर जवाब नहीं देते हैं और सबको हम हाँ हाँ करेंगे तो फिर टाइम हमारा रहेगा नहीं और हमारी इम्प्रेशन भी अच्छी नहीं होगी। इससे तो हम अपने आप में क्लियर रहे कि किस किस ने काम दिए हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं, अर्जेंट हैं और मैं कर सकूंगा, बस उनको ही हाँ करें, बाकी को हम कहें कि मैं इन इन कामों में व्यस्त हूँ तो मैं तो नहीं कर सकूंगा। तो इसको कहते हैं लर्न टू से नो। जैसे हाँ करना सीखते हैं ऐसे कई समय हमें ना करना भी सीखना होता है, ताकि आवश्यक और महत्वपूर्ण कामकाज, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बताए हुए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में ये धारणाएं करें। जैसे कई बात हम दो शब्द में कह सकते हैं, अब बोलने में भी हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, कई बहुत ज्यादा वर्णन करते रहते हैं, काम थोड़ा सा किया है पर बहुत विस्तार से वर्णन करते रहते हैं, तो ये टू मच विस्तार से बात करना ये भी वेस्ट है। तो बाबा भी हमें सिखाते हैं कि जो काम हम दो मिनट में कर सकते हैं, दो शब्द में कर सकते हैं, उसके लिए 10 शब्द ना बोलें। जैसे मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हैं, इसमें 8-10 लोग कामकाज करते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट हेड आता है और पूछते हैं कि फलाना व्यक्ति अभी तक नहीं आया है, तो उस समय हमें यस और नो इतना ही जवाब देना होता है, परंतु हम 5 शब्द और भी बोलेंगे कि वो कहाँ रोज आता है, वो तो लेट ही आता है, आज आपको पता चला है, हम तो रोज देखते हैं, करके हम 10 शब्द ज्यादा बोल देते हैं। तो इसलिए जितना जरूरी है उतना हम बोलें, तो हमारे बोल व्यर्थ नहीं होंगे, तो वो जो टाइम जो हम बोलने में लगाते हैं वो टाइम हमारा सफल होगा, है ना। जैसे हम भाषण करते हैं, पर जो पावरफुल व्यक्ति है, तपस्वी व्यक्ति है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि वरदानी बोल, आशीर्वाद के वचन। हम ये नहीं कहते हैं कि वरदान के भाषण करो, नहीं, पर वो 2 शब्दों से भी बहुत बड़ी शक्ति दे देते हैं, तो ये उनकी मन वचन कर्म की ग्रेटनेस है, सफल है उनके मन वचन कर्म, शुद्ध और श्रेष्ठ है, तो 2 शब्दों में भी वो बहुत कुछ प्राप्ति करा सकते हैं, अनुभूति करा सकते हैं, और हम घंटा भाषण करेंगे तो भी उसको प्राप्ति नहीं होगी अगर हम अपने मन वचन कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। और कर्म, अनावश्यक कर्म में हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो करने की जरूरत नहीं है, जो करने से कोई फायदे नहीं है, जो श्रीमत अनुसार कर्म नहीं है, परंतु हम व्यक्ति के प्रभाव में, संग में आ जाते हैं, तो हम घंटों व्यर्थ बातें सुनते रहेंगे, हम भी खुद व्यर्थ बातों का अधूरी, है ना, पूरी जानकारी भी नहीं है, थोड़ा कुछ पता चला है और हम कहते रहते हैं वो बातें, तो वो कर्म भी वेस्ट, वो टाइम भी वेस्ट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि राय कर दो, पहाड़ मत बनाओ, कोई बात बात का बतंगड़ नहीं करो, वायुमंडल नहीं बनाओ, है ना, कोई बात है, चलो वे ठीक है, उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, उसी पर फोकस हो जाए तो हमारा टाइम उसमें ज्यादा नहीं जाएगा। पर जब ये नेचर है कि आधी अधूरी बात पता चली वो जगह जगह वर्णन करना, या नेचर है कि बात को बड़ा कर देना और सबका ध्यान अपने तरफ खींचवाना, तो इस प्रकार से कोई न कोई आचार संहिता, डिसिप्लिन, नियम मर्यादा का हम भंग करते हैं, चाहे चिंतन द्वारा, बोल द्वारा या कर्म द्वारा, तो टाइम का मैनेजमेंट भी नहीं होगा और टाइम का फायदा भी हम नहीं उठा सकेंगे। देखो किसी में गाने की कला है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आधी रात को उठ के गाने लगे, तो कला है पर टाइम भी ठीक चाहिए कि किस समय गाना है ताकि किसी को उससे तकलीफ ना हो। कला का सदुपयोग भी करना है और टाइम पर करना है। तो ये सब बातें जो है उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। भाई सीजन में आप बीज बोते हैं, टाइम पर बीज बोते हैं खेतों में, तो सीजन में बोया हुआ बीज अनेक गुना फल देता है और उस फल का अपना ही स्वाद और शक्ति होती है। सीजन के बिना आज चीजें हम उगाते हैं तो वो सीजन जैसा रस, स्वाद और शक्ति नहीं देता है। इसलिए कमाने की सीजन है, दिन रात मेहनत करते हैं और कमा लेते हैं। उस समय खाना पीना, निंद्रा करना, मौज मनाना, ये सब साइड पर रखते हैं कि अभी कमाने की सीजन है। व्यापारी कहेंगे हमारी कमाने की सीजन है, किसान कहेंगे हमारा अभी खेती का समय है। तो देखो टाइम फैक्टर हर जगह है ना। आपको कोई आपके बड़े कहते हैं कि भाई पानी ले आओ, पर आप दो घंटे के बाद लेके आते हैं, तो वो कर्म आपका आशीर्वाद के पात्र नहीं बनता है। जिस समय जिस व्यक्ति को जो सहयोग, साथ, मदद चाहिए, उस समय अगर हम कर सकते हैं और करते हैं तो हमें दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलते हैं और हमें खुद सेटिस्फेक्शन होता है कि हम किसी के काम आए। पर वो टाइम पर करें तो है ना। देखो कोई कार्य ठीक करना नहीं आता है तो हम घंटा लगा देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट करना सीखे। वही एक व्यक्ति जिसको अच्छी तरह करना आता है, वो काम करना आता है, तो वो 5 मिनट में भी कर देगा क्योंकि उनको वो मेथड पता है। तो इस प्रकार से समय का सदुपयोग, समय का प्रबंधन और समय को सफल करना, आज हम सब ने समय को पहचाना है। देखो 3 चीजें हैं, एक तो भगवान का आदेश और ये परिवर्तन की वेला के समय है ना। इस समय भगवान को हमारा सहयोग चाहिए क्योंकि अभी महापरिवर्तन का समय है और हम आत्माओं के सहयोग से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। इसलिए वर्तमान समय, संगम युग का समय जो हम सब जानते हैं, तो हमें व्यर्थ तेरी मेरी इसकी उसकी आगे की पीछे की बातों करने में, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ है ना, कितना विस्तार में हम चले जाते हैं, तो ऐसे हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है पर सफल करना है। और जब समय अनुसार हम अपना तन मन धन गुण कला विशेषता का उपयोग करते हैं तो अनेक गुना, अनेक जन्मों की अविनाशी प्राप्ति हम कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना कि इस एक जन्म को सफल कर लो श्रीमत पर, तो 21 जन्म आधा कल्प तक उसका पदम गुणा फल हमें मिलता है। इस तो संगम का समय टाइम अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, परंतु इसमें भी ये महापरिवर्तन की वेला के समय और भगवान के आदेश पर जो आत्माएं अपना मन वचन कर्म अपने गुण कला विशेषता से भगवान के मददगार बनते हैं, तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए हम पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें टाइम को नकारात्मक चिंतन में या व्यर्थ वाणी में या व्यर्थ साधारण या विकारी कर्मों में, नकारात्मक कर्मों में लगाना नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि श्रेष्ठ कर्म में लगाना है। तो हमारे पास अपना भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण, परमात्मा के भी प्यार और दुआ के पात्र हम बन जाते हैं। तो ये अवेयरनेस हम सबको रखनी है, क्योंकि हम पूरे सृष्टि के आदि मध्यंत को और वर्तमान संगम के कल्याणकारी समय को जानते हैं। और प्रैक्टिकल अगर आपका लाइफ एक्यूरेट, मन वचन कर्म एक्यूरेट यथार्थ है और उस अनुसार अपने आप को साधारण है ना, कई बार हम पाप नहीं करते हैं, व्यर्थ कर्म नहीं करते हैं, पर साधारण चिंतन में टाइम लगाते हैं, ऐसे दैनिक कामकाज साधारण बातों में सोचते रहना, सुनते रहना औरों की बातें या खुद भी करते रहना, तो हमें अपनी उच्च स्थिति डिसिप्लिन्ड जीवन नियम मर्यादा और ज्ञान युक्त तो समय का बहुत ही लाभ प्राप्ति हम कर सकते हैं। ओम शांति।